हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे हरे। जय राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधे। जय राधा मदन मोहन ललिता देवी राधा मदन मोहन ललिता देवी। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय। निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिप्रकाचार्य अष्टोदर्शत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा। आज के इस रविवारीय श्रीमद् भागवत क्लास में सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के छठे अध्याय से पढ़ रहे हैं। अध्याय का नाम है प्रजापति दक्ष की कन्याओं का वंश। श्लोक 19 से 22 तक हम पढ़ेंगे। मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। प्रजापते रंगिरस्वधा पत्नी पितृणथा अथर्वा अंगिर संवेदम पुत्रत्वे चाकरोत् सती प्रजापते रंगिरस्वधा पत्नी पितृणथा अथर्वा अंगिर संवेदम पुत्रत्वे चाकरोत् सती प्रजापते रंगिरस्वधा पत्नी पितृणथा अथर्वा संगिरस्वदम् पुत्रत्वे चाकरोत् सती। माताजी प्रजापतेरंगिरस्वधा पत्नी पितृणथा अथर्वा संगिरस्वेदम् पुत्रत्वे चाकरोत् सती। शब्दार्थ प्रजापते अंगिरसः अंगिरा नामक अन्य प्रजापति को स्वधा स्वधा पत्नी पत्नी पितृण पितरगण अथ तत्पश्चात अथर्व अंगिरसम अथर्व अंगिरस वेदम साक्षात वेद पुत्रत्वे पुत्र के रूप में च तथा अकरोत स्वीकार किया सती सती ने। अर्थ और श्रील प्रभुपाद द्वारा प्रजापति अंगिरा की दो पत्नियां थी स्वधा तथा सती। स्वधा ने समस्त पितरों को पुत्र के रूप में स्वीकार किया और सती ने अथर्वांगिरस वेद को ही पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। आगे के दो श्लोक मैं पढ़ता हूं और अर्थ भी पढ़ते हैं। कृशाशोचर्षी भार्यायां धूमकेतुं जिजणत धिषणायां वेदशिरो देवलं वयुनं मनुं। कुशाश्व की अर्चिस तथा धीषणा नामक दो पत्नियां थी। अर्चिस से धूमकेतु और धीषणा से वेदशिरा देवल वयुन तथा मनु नामक चार पुत्र उत्पन्न हुए। ताक्षर्थ विनता कद्रु पतिंगी पतंगी यामिनी तीच पतंग्यासुता पतगान यामिनी शलभानथ सुपर्णासुत गरुडम साक्षात यज्ञेश वाहनम सूर्यसुत मनुरुम च कद्रुणान नागन के नागने कशः। कश्यप को तार्क्ष नाम से भी जाने जो कि तार्क्ष नाम से भी जाने जाते हैं उनकी चार पत्नियां थी। विनता उसी का नाम सुपर्णा है। कद्रु पतंगी तथा यामिनी। पतंगी ने नाना प्रकार के पक्षियों को जन्म दिया और यामिनी ने टिड्डियों को। विनता सुपर्णा ने भगवान श्री विष्णु के वाहन गरुड़ को तथा सूर्यदेव के सारथी अरुण को अनुरु अथवा अरुण को जन्म दिया। कद्रु से अनेक प्रकार के नाग उत्पन्न हुए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद से पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम है प्रजापति दक्ष की कन्याओं का वंश। तो हम देखते हैं भागवत में कई जगह पर अनेकों अनेकों वंशों का वर्णन है। किस प्रकार हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में देखा कि प्रचेताज का वंश देखा, फिर मनु के वंश देखे, फिर अभी दक्ष प्रजापति का वंश देख रहे, उनके पुत्रियों का वंश देख रहे। तो ऐसे अनेकों अनेकों वंशों का वर्णन श्रीमद् भागवत में और भी जो वैदिक शास्त्र है उनमें आता है। तो हम देखते हैं कि वंशावली यानी जो वंश का परंपरा है उसका भी एक महत्व है। हम देखते हैं कि ये जो राजाओं के वंश थे उनमें काफी सारे बहुत से महान व्यक्तियों का जन्म हुआ है। जैसे कि आज के श्लोक में हमने देखा कि देवल नाम के ऋषि है, उनका इस वंश में वर्णन आता है। फिर गरुड़ जी का वर्णन आता है, उनका भी ये सुपर्णा नाम की जो कश्यप मुनि की पत्नी थी उनसे उनका उगम हुआ था। तो ऐसे अनेकों अनेकों वंशों का वर्णन है और उनमें अनेकों अनेकों महान हस्तियां जो व्यक्ति है उनका भी वर्णन आता है। हम शास्त्रों में देखते हैं रघुवंश का एक वर्णन है, सूर्यवंश उनको बोलते हैं, कि जैसे प्रभु श्री राम सूर्यवंश में उनका जन्म हुआ तो वो रघुकुल या रघुवंश का वर्णन आता है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का चंद्रवंश है, यादव वंश है, उनमें भगवान श्री कृष्ण का वर्णन आता है। फिर भगवद गीता में वंश के बारे में अर्जुन भी एक पहले चैप्टर में ही बोलते हैं या भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि मैं ये युद्ध क्यों लड़ रहा हूं, अगर मैं ये युद्ध लड़ूंगा उसमें सभी पुरुष जाति का नाश हो जाएगा, बहुत से सैनिक मारे जाएंगे, तो उनकी पत्नियां विधवा हो जाएंगी और उसके वजह से वर्ण संकर वर्ण या वो जो वंशावली है उसका नाश हो जाएगा और गलत प्रकार की संतानें उत्पन्न होगी। तो ये शास्त्रों में हम देखते हैं कि वर्णावली या वंशावली का बहुत सा उदाहरण है, उसका महत्व है। तो हम हमारे निजी जीवन में भी देखते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई लड़का, छोटा बच्चा या बड़ा होने के बाद भी कोई व्यक्ति कुछ अच्छा कार्य करता है तो उसको कहा जाता है कि अरे वाह, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, किसका पुत्र है। समाज में उसकी जो पहचान है उसके माता पिता से होती है। या आध्यात्मिक सर्कल में अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य करता है या कोई गलत भी कार्य करता है तो उसका भी पहचान उसके गुरु से की जाती है, अरे किसका शिष्य है, ऐसा ऐसा इतना अच्छा कार्य कर रहा है। अभी हम देखते हैं कि बहुत से भक्त है, जैसे कि विवेक बिंद्रा जी है, बहुत फेमस है बिजनेस वर्ल्ड में। फिर अपने और भी गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के शिष्य है दिल्ली में, हम सुनते हैं उनका नाम कि बहुत अच्छे प्रचारक है, तो हमको लगता है अरे वाह, महाराज जी के शिष्य कितने अच्छे भक्त है। तो गुरु की पहचान उनके शिष्यों से होती है। अपने चौपाटी मंदिर में भी हम देखते हैं कि श्रीमान गौर गोपाल प्रभु जी है, उनका बहुत ही फेमस है वो, उनके लाखों फॉलोअर्स है। तो उनको जब भी हम देखते हैं तो हमको लगता है कि अरे वाह, बाहर के लोग भी ऐसा पूछते हैं, अरे ये किसके शिष्य है, इतने महान है, श्रीमान गौरंग प्रभु है, उनका नाम भी हम सुनते हैं तो लगता है अरे वाह इतने अच्छे आईआईटीयन डिसाइपल से इनके गुरु कौन है। तो ऐसी वंशावली आध्यात्मिक सर्कल में भी देखी जाती है जिसको हम बोलते हैं गुरु शिष्य परंपरा। तो शिष्य गुरु की पहचान उनके शिष्यों से की जाती है कि अरे इनके शिष्य इतने अच्छे हैं तो इनके गुरु कितने अच्छे हो गए। उसी प्रकार पुत्रों से उनके पिता की पहचान होती है, अरे ये पुत्र ऐसा इतना अच्छा कार्य कर रहा है तो इनके पिता भी अच्छे हो गए। हाँ मराठी में जो अपने संत तुकाराम थे वे एक अभंग गाते थे, शुद्ध बुजापोटी फले रसाल गोमटी। उसका मतलब ऐसा है कि अगर बीज शुद्ध है अच्छा है तो वो उससे जो पौधा आएगा पेड़ आएगा और उससे आगे जो फल आएंगे वो भी मीठे ही होंगे। अगर हम करेले का रोप लगाते हैं तो उसमें करेला ही आएगा, और कोई व्यक्ति आम का बीज बोता है जमीन में मीठे आम का तो कुछ सालों के बाद उससे मीठे आम ही उगेंगे। तो इसी प्रकार वंशावली का है, अगर हम हमारे पुत्रों को या हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको अच्छे संस्कार देंगे तो नैसर्गिक रूप से वे अच्छे नागरिक बनेंगे और आगे जाके हमारी जो वंशावली है उसका नाम रोशन करेंगे। भागवत में और एक प्रहलाद महाराज की भी कथा आती है, उसमें जब प्रहलाद महाराज नरसिम्हदेव से वरदान मांगते हैं कि मेरे पिता का उद्धार करो, तो उस समय नरसिम्हदेव उनको कहते हैं कि आपके आपका और आपके पिता का ही नहीं तो आपके 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप भगवान के भक्त बने हो। तो इस प्रकार अगर अपने परिवार में अपने वंश में कोई एक भी व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त बनता है तो पूरे वंश का उद्धार हो जाता है, 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तो ये जो गर्भाधान संस्कार है या जो बच्चे होने वाले बच्चे को पेट में संस्कार देने का जो अपना वैदिक संस्कृति है उसका भी बहुत महत्व है। उसका भी हम उदाहरण प्रहलाद महाराज के जीवन से ही देखते हैं कि किस प्रकार नारद मुनि ने उनको उनके माता के गर्भ में ही भागवत का ज्ञान दिया और उससे वे इतने महान भक्त बन सके। तो हमको चाहिए कि वंश परंपरा का आदर करना चाहिए और जो भी राजा या भगवान के भी अंश या भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम का भी हमने उदाहरण देखा कि वे भी एक अच्छे वंश का आधार लेते हैं या उसमें वो जन्म लेते हैं ताकि उदाहरण प्रस्तापित करने के लिए। तो फिर दूसरा एक इसका उदाहरण ऐसा है कि भले हम कितने ही बड़े वंश में जन्म लिए क्यों ना हो, अगर हमारी संगति गलत है तो हमारा नुकसान हो सकता है या हम गलत मार्ग पे जा सकते हैं। उसका उदाहरण है भौमासुर। हालांकि वो वराह देव और भूमि माता के पुत्र थे, परंतु क्योंकि जरासंध और गलत ऐसे गलत लोगों के संग में रहने की वजह से, हालांकि वे बहुत ही अच्छे कुल में या वंश में उनका जन्म हुआ था, फिर भी वे गलत मार्ग पे चले गए और भगवान श्री कृष्ण को उनका वध करना पड़ा और उनसे बाकी जो राजकन्याएं थी उनसे उनकी मुक्तता करानी पड़ी। तो दूसरा विपरीत उदाहरण ऐसा है कि केवल जन्म से हमारी महानता सिद्ध नहीं होती है, हमको चाहिए कि अच्छे लोगों का संग करना चाहिए और स्वयं से प्रयास करना चाहिए कि अपने अंदर जो अच्छे गुण हैं उनका विकास करने के लिए। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ सकते हैं। इसका एक उदाहरण आज के जीवन में भी आता है, मोदी जी अपने जो पंतप्रधान हैं उनको एक इंटरव्यू में एक बार पूछा गया कि आपको इतिहास में किस प्रकार याद रखा जाएगा या याद रखा जाना चाहिए ऐसा आपको लगता है, क्योंकि आप अभी 10 साल से भारत का पंतप्रधान पद निभा रहे हैं और आपने बहुत ही भारत का नाम उजागर किया है, तो आपको इतिहास में क्या नाम से या किस प्रकार जाना जाएगा। तो उस समय मोदी जी उदाहरण देते हैं कि आपको पता है कि महाभारत किसने लिखा, रामायण किसने लिखा, वो इंटरव्यू को बोलते हैं, और बहुत से ऋषियों का नाम भी बताते हैं, आपको इन सब के बारे में पता है, वो बोले नहीं। तो बोले ये लोग तो बहुत महान हो चुके, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं, इतने बड़े बड़े ऋषि हो गए, इतने बड़े इन्होंने इतना महान कार्य किया है, उनके बारे में लोगों को पता नहीं है, तो मेरे बारे में लोगों को आगे चल के इतिहास में क्या पता रहेगा। मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मोदी को लोग पहचाने या मेरा नाम लोग याद रखें। मेरी इच्छा इतनी है कि भारतवर्ष और ये जो सनातन संस्कृति है, जो वैदिक नॉलेज है, इसका लोग याद रखे और इससे पूरी दुनिया को ज्ञान मिलता रहे, मार्गदर्शन मिलता रहे। तो आज के समय में भी राजर्षि जो बोलते हैं कि जो राजा भी है और उसका स्वभाव या उसका जो आचरण है वो ऋषि का है, ऐसे देखे जाते हैं। तो इतिहास में हम देखते हैं कि भले ही कोई बड़ा व्यक्ति हो, बहुत ही बड़ा राजा हो, फिर भी समय के अनुसार उनका नाम कोई याद नहीं रखता है। तो हमको हमारे वंश के ऊपर या हमारे जो उपलब्धियां है उसके ऊपर बहुत गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतिहास में ये चीजों को कोई याद नहीं रखता है। फिर हम देखते हैं कि आज के जो श्लोक है, उस श्लोकों में महान हस्तियों का नाम आता है। उसमें से एक जो है वो है गरुड़ जी है। गरुड़ जी के बारे में ज्यादा चर्चाएं या क्लासेस हमको सुनने को नहीं मिलते हैं, परंतु जो भी श्रील प्रभुपाद के पुस्तकों में या उनके इंटरव्यू जो मॉर्निंग वॉक्स उसमें जो भी चर्चा हुई, उसमें जो भी मुझे मिला उसका मैंने संकलन किया है, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो जैसे कि श्लोक में बताया गया है, कश्यप मुनि और उनकी पत्नी सुपर्णा, उन्हीं का नाम दूसरा नाम था वनिता, उनसे गरुड़ जी का जन्म हुआ। उनके जन्म की कथा इस प्रकार है कि कश्यप मुनि, जैसे कि हम जानते हैं, दक्ष प्रजापति के 17 कन्याओं से कश्यप मुनि जी का विवाह हुआ था। उसमें से दो कन्याएं थी कद्रु और सुपर्णा। ये दोनों ने पुत्र की प्राप्ति के लिए कश्यप मुनि से विनती की, तो वे उनको आशीर्वाद देते हैं कि कद्रु जी, जो कद्रु रानी थी, महारानी थी, वो आशीर्वाद मांगती है कि मुझे 1000 पुत्र का मेरे से जन्म हो, और सुपर्णा जो थी वे मांगती कि मुझे 2 ही पुत्र हो, परंतु उनका प्रत्येक जन का जो शक्ति है वो इनके 1000 पुत्र के बराबर हो। तो ऐसे वरदान मांगते हैं और कश्यप मुनि उनको वरदान भी देते हैं और चले जाते हैं। और फिर समय के अनुसार कद्रु को 1000 पुत्रों की प्राप्ति होती है और सभी जो जो नाग है या सांप है उनका जन्म कद्रु से होता है। और फिर सुपर्णा को भी 2 एक अंडे के रूप में 2 उनसे जन्म लेते हैं, परंतु क्योंकि कद्रु के पुत्र जल्दी समय पे ही जन्म लिया और सुपर्णा जी के जो पुत्र थे वो अंडे से बाहर ही नहीं आ रहे थे, तो पेशेंस ना होने की वजह से या उनको थोड़ा जल्दी हो गया कि अरे क्या हो रहा है, इसलिए उन्होंने खुद से अपने एक अंडे को फोड़ दिया और उसमें से अरुण जो है उनका जन्म हुआ। परंतु क्योंकि समय से पहले ही उन्होंने वो अंडे को फोड़ दिया था, तो उनमें जो तेज था वो सूर्य, सुबह का जो सूर्य रहता है, मॉर्निंग सन, उसके जैसा था, परंतु दोपहर का जो सूर्य रहता है उसने इतना ज्यादा तेज नहीं था। तो इसलिए और उनको ऐसा कहा जाता है कि उनको थोड़ा अपंगत्व भी था, उनके पैरों में थोड़ा वीकनेस था, इसलिए उन्होंने अपनी माँ को ही श्राप दे दिया कि आपने समय से पहले ऐसा कर दिया इसलिए कि आप दासी बन जाओगी, और उनसे विनती भी किया कि दूसरा जो अंडा है उसको आप जल्दी मत फोड़ो, उसको उसने समय के साथ उसको फूटने दो। और ऐसा कहने के बाद उन्होंने वेट किया और उससे दूसरे अंडे में से गरुड़ जी का जन्म हुआ। हाँ, तो गरुड़ जी के बारे में शास्त्रों में बहुत वर्णन है और हमारे निजी जीवन में विशेष रूप से भक्त ये भी उनका अनुभव करते हैं। तो श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद के 21वें अध्याय के 24वें श्लोक में ऐसा कहा गया है कि गरुड़ जी अपने 2 पंखों से जब अपने वो पंख वाइब्रेट करते हैं या हिलाते हैं, उस समय उसमें से सामवेद का उच्चारण होता है। जो पंख का फड़फड़ाने का जो आवाज है उसमें से सामवेद का उच्चारण होता है। वहीं पे यहां यह भी कहा गया है कि सामवेद के जो 2 विभाग है, बृहत और रथांतर, तो ये 2 विभाग माने गरुड़ जी के 2 पंख है। और भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अमोंग द बर्ड्स आई एम गरुड़ा। जो भी महान हस्तियां है, सभी चीजों में जो भी महान बड़े या शक्तिशाली है, उन चीजों को हम भगवान से रिलेट कर सकते हैं। भगवत गीता में जैसे कहा है, पर्वतों में मैं हिमालय हूं, नदियों में मैं गंगा हूं, हाँ वैष्णवानाम यथा शंभु, हाँ जो भी भगवान के भक्त है, वैष्णव है, उनमें मैं शंभु महादेव हूं, और पक्षियों में भगवान गरुड़ है, तो ऐसा वर्णन आता है। फिर हम देखते हैं कि कभी भी भगवान विष्णु के कैरियर या उनके वाहन गरुड़ जी है, तो कभी भी भगवान कहीं पे जाते हैं तो गरुड़ के ऊपर बैठकर जाते हैं। कलकत्ता के इस्कॉन मंदिर में हमने देखा कि गरुड़ जी के ऊपर सवार होकर भगवान विष्णु आए हैं, और एक भक्त इस भवसागर में डूब रहा है या उससे निकलने का प्रयास कर रहा है, और उसको भगवान हाथ देते हैं, और वो वैष्णव जो भक्त है वो भगवान का आश्रय लेकर वैकुंठ जाता है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार हमेशा भगवान गरुड़ जी के ऊपर सवार होकर आते हैं और अपने भक्तों का रक्षण करते हैं। दूसरा हमने देखा भागवत में गजेंद्र का उद्धार। गजेंद्र के स्टोरी में भी हम देखते हैं कि किस प्रकार भगवान गरुड़ जी के ऊपर सवार होकर आते हैं और उस जो वो जो मगरमच्छ था उसको अपने चक्र से उसका उद्धार कर देते हैं, और फिर गजेंद्र का भी उद्धार कर देते हैं। और एक ऐसे उद्धार की स्टोरी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि संत तुकाराम जो महाराष्ट्र में संत हो चुके हैं, उनको भी वैकुंठ गमन, उनका जब वे जब वैकुंठ में गए तो वे भी वर्णन करते हैं कि गरुड़ आए थे उनको लेने के लिए, और गरुड़ के ऊपर बैठकर विष्णुदूत, भगवान के जो पार्षद है विष्णुदूत, वे भी आए थे, और वो सदेह इस देह के साथ वैकुंठ गए थे। तो ऐसा एक वर्णन आता है। तो हमेशा भगवान के जो वाहन है गरुड़, ये भगवान के साथ रहते हैं या भगवान के पार्षदों के साथ रहते हैं, या जो भगवान के भक्त है उनको वैकुंठ लेके जाने के लिए भी वे वाहन के रूप में आते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो भी विष्णु का मंदिर है, विशेष रूप से दक्षिण भारत में हम देखते हैं कि जो भी भगवान विष्णु का मंदिर है उसके सामने गरुड़ स्तंभ होता है, तो एक बड़ा सा स्तंभ खंभा खड़ा रहता है और उसके ऊपर गरुड़ जी बैठे रहते हैं। क्यों? हमेशा हम देखते हैं अभी भौतिक जगत में, आज के दुनिया में हम देखते हैं किसी का भी बंगला रहता है, घर रहता है, उसके सामने उनका कार पार्क रहता है, किधर भी जाना है तो बोलते ड्राइवर आ गए क्या, चलो मंदिर जाना है, हाँ, तो ऐसा भौतिक जगत में देखा जाता है। तो उसी प्रकार भगवान क्या करते हैं, उनका जो वाहन है गरुड़ जी, हमेशा वे तैयार रहते हैं, किधर भी भगवान को जाने की इच्छा हुई तो गरुड़ा एयरलाइंस, हाँ, गरुड़ जी हमेशा उनको लेके जाते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी एक जगह पे कहते हैं, जिस प्रकार यहाँ पे दुनिया में हम देखते हैं कि एक पक्षी एक पेड़ से उड़कर दूसरे पेड़ पर जाके बैठता है और वहां से फिर तीसरे पेड़ पर जाता है, उसी प्रकार गरुड़ जी इतने बड़े पक्षी है कि वे जब यहाँ एक जगह से या एक प्लैनेट से, एक प्लैनेट से उड़ते हैं तो दूसरे प्लैनेट में जाके रुकते हैं, इतने बड़े पक्षी है वे। इतना ही नहीं, ऐसा भी वर्णन है कि गरुड़ जी जब उनको भूख लगता है तो वे हाथी और टॉर्टाइस, बड़े बड़े टॉर्टाइस और हाथी को खा लेते हैं। तो हाथी पहले से, हाथी हमको इमेजिन करने में इतना बड़ा है, नैसर्गिक रूप से जगह जगह पर हाथी नहीं देखे जाते क्योंकि इतना बड़ा प्राणी है, उसको खाने को इतना लगता है, तो वो जंगल में ही पाए जाते हैं या जू में हाथी देखे जाते हैं। आज के दुनिया में ऐसा जगह जगह पर जैसे कुत्ता बिल्ली दिखते हैं, वैसे हमको हाथी नहीं दिखाई पड़ते क्योंकि वे विशाल है और उनकी इसीलिए संख्या भी कम है। और तो उसी, परंतु गरुड़ जी इतने बड़े है कि उनका भोजन हाथी है। सोचो, हाथी का भोजन टन्स में रहता है, वो एक एक टन खाना खा लेते एक बार, तो हाथी को खाने वाले पक्षी कितने बड़े रहेंगे। तो इस प्रकार गरुड़ जी आकार में भी बहुत ही बड़े हैं। फिर गरुड़ स्तंभ का वर्णन आया। जगन्नाथपुरी के मंदिर में भी दो गरुड़ स्तंभ है, हाँ, बाहर एक सूर्य जो बहुत बड़ा एक स्तंभ है, उसको शायद अरुण स्तंभ बोलते हैं, हाँ, तो वो एक है, और अंदर जब भी हम लाइन से होते हुए जाते हैं दर्शन के लिए तो पीछे के साइड में एक गरुड़ स्तंभ है, वहां पे चैतन्य चरितामृत में भी उसका वर्णन है कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु उस स्तंभ के पीछे रह के भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन किया करते थे। और एक बार एक बूढ़ी माता, हाँ एक ओल्ड लेडी थी जिसको भगवान का दर्शन लेना था, और वो भगवान के दर्शन के लिए इतनी आतुर थी कि वो चैतन्य महाप्रभु के कांधे पर चढ़कर भगवान का दर्शन लेने लगी। हालांकि चैतन्य महाप्रभु भी भगवान है, उनके ऊपर हमको चढ़ना नहीं चाहिए, परंतु ये जो भक्त थी माता वो भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए इतनी आतुर थी कि वो चैतन्य महाप्रभु के कांधे के ऊपर चढ़कर भगवान का दर्शन लेती है। तो हम देखते हैं कि हमेशा गरुड़ जी भगवान के सामने उपस्थित थे, जैसे हमारे हर इस्कॉन मंदिर में श्रील प्रभुपाद जी भगवान के सामने खड़े रहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की तरफ देखते रहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी एक प्रवचन में प्रवचन दे रहे थे तो बीच में ही एक व्यक्ति खड़ा रहता है और बोलता है, क्या आपने भगवान देखा है, किधर है भगवान? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये देखो सामने ही भगवान है, जैसे हमारे मंदिर में राधा वृंदावन बिहारी जी है, तो बोलते हैं कि सामने ही भगवान है, मैं हमेशा भगवान को देख पा रहा हूं, हमेशा मैं देखता हूं, परंतु अभी क्योंकि तुम बीच में खड़े हो तो मैं देख नहीं पा रहा हूं, आप बैठ जाओ मुझे भगवान दिखेंगे। तो इस प्रकार भगवान के जो भक्त है वो भगवान को हमेशा देखते रहते हैं, और भगवान है वे भी अपने भक्तों को देखते रहते हैं। तो हमको भी चाहिए कि अगर हमको भगवान का दर्शन पाना है तो कोई भक्त का हम अगर आश्रय ले, जैसे वो बूढ़ी माता गरुड़ जी के पीछे खड़े रह के भगवान को देख रही थी, चैतन्य महाप्रभु का भी भाव वही था कि मैं गरुड़ जी के पीछे रहूंगा तो भगवान मुझे देखेंगे। और हमको भी चाहिए कि जो वैष्णव है भगवान के भक्त है उनके साथ हम रहेंगे, उनके पीछे रहेंगे तो भगवान हमें भी देख लेंगे। फिर और एक स्टोरी श्रील प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय के बारे में। अगर हम छोटे भी है परंतु हमारा अगर निश्चय दृढ़ है, दृढ़ निश्चय है, तो हम बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। जैसा एक क्रिश्चियन फिलोसॉफी में वो बोलते हैं कि आपको अगर विश्वास है, इफ यू हैव फेथ देन यू कैन मूव माउंटेन, आप पर्वत को भी हिला सकते हो, ऐसा उनके तत्वज्ञान में एक प्रोवर्ब है। वैसा ही हमारे वैष्णव संस्कृति में भी एक वाक्य है, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दीन तारिनम। तो मुकम माने जो डंब है, जो बोल भी नहीं सकता है, ऐसे व्यक्ति को वाचा गुरु दे सकते हैं, बोलने की शक्ति गुरु दे सकते हैं। पंगुम लंगायते गिरिम, जो कि लंगड़ा व्यक्ति है, जो चल भी नहीं सकता है, उसको पर्वत लांगने की शक्ति गुरु की कृपा से मिल सकती है। तो ऐसा ही एक उदाहरण शास्त्रों में आता है, श्रील प्रभुपाद जी भी इसके बारे में बोलते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि एक स्पैरो, एक चिमनी, जो छोटी छोटा पक्षी रहता है चिमनी, वो अपने एग्स अंडे समुद्र के तट पर अपने अंडे देती है, और फिर नैसर्गिक रूप से समुद्र का जब लहर आता है, लाट आता है, तो वो अंडों को लेकर समुद्र में चला जाती है। और फिर ये स्पैरो, ये जो चिवताई जो चिमनी थी, उसके तो अंडे चले गए, तो फिर वो जो चिमनी थी वो समुद्र को बोलती है कि तुम मेरे अंडे वापस लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हें सुखा दूंगी। अभी समुद्र कितना बड़ा है, सागर कितना बड़ा है, और चिमनी चिवताई कितनी छोटी है, उसका क्या कैपेसिटी है, परंतु उसका निश्चय दृढ़ है, और वो अपनी चोंच में थोड़ा थोड़ा पानी लेकर बाहर फेंकने, थोड़ा पानी समुद्र का लेने का और वो बाहर फेंकने का, ऐसा वो प्रयास करने लगी। और फिर उसका ये प्रयास देखकर बाकी वहां पे जो पक्षी थे या प्राणी थे या मछलियां थी, वो हंसने लगी, अरे चिवताई तुम पूरा जन्म भर, पूरा आपका जो आयुष्य है, जितने भी साल आप जियोगी, पूरा जन्म भर भी आप ऐसा पानी निकालते रहोगी तो भी समुद्र सूखने नहीं वाला है। परंतु वो जो चिमनी थी वो अपना निश्चय नहीं छोड़ती, वो अपना प्रयास चालू रखती है। और ये जो न्यूज है, हाँ ये जो खबर है, वो गरुड़ जी जो कि पक्षियों के राजा है, उनके पास पहुंचती है कि एक छोटी सी चिमनी अपने अंडे वापस पाने के लिए समुद्र सुखाने का प्रयास कर रही है। तो वे करुणावश वहां पर पहुंच जाते हैं और समुद्र देवता को आह्वान करते हैं कि तुम इस चिमनी के जो अंडे हैं वापस लौटा दो, नहीं तो मैं आपको सुखा दूंगा। और जैसे कि हमने पहले ही सुना कि गरुड़ जी की शक्ति कितनी है, उनके पंखों के फड़फड़ाने से सामवेद उत्पन्न होता है, उनका वो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे जाते हैं एक उड़ान में, तीसरा उनका खाने का भोजन हाथी है, तो और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि वे भगवान विष्णु के वाहन है। जैसे देखा जाता है कि बड़े व्यक्ति के नौकर का भी बहुत बड़ा वैल्यू होता है। जब भी हम सरकारी दफ्तरों में जाते हैं वहां पे चपरासी को भी हम सर बोल के बात करते हैं, सर थोड़ा साहब से हमारा मुलाकात करा दो, तो क्योंकि अंदर जाने का एंट्री उनके पास से है, परमिशन वो लेके देने वाले, हमारा फाइल आगे वो लेके जाने वाले, तो इसलिए वो जो चपरासी है उसका भी बहुत वैल्यू रहता है। ये तो भगवान विष्णु के स्वयं वाहन है, तो इसलिए गरुड़ जी का बहुत शक्ति है। और फिर जो समुद्र देवता है वो भी डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और तुरंत वो जो स्पैरो चिमनी चूताई थी उसके अंडे लौटा देते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में भी अगर हम दृढ़ निश्चय से प्रयास करें और तो हम क्या करेंगे, जो भगवान के भक्त है, वरिष्ठ वैष्णव है, जो कि शक्तिशाली है, उनका कृपा अट्रैक्ट कर सकते हैं, और उनकी कृपा से पंगुम लंगाए थे गिरिम। हालांकि हमारी ये कैपेसिटी नहीं है कि हम भगवान के पास जा सके या भगवान की शुद्ध भक्ति कर सके, फिर भी अगर हम श्रील प्रभुपाद जैसे वैष्णव जो है उनके आश्रय में रहते हैं या उनका कृपा अट्रैक्ट करते हैं, तो हम भी ये जो भवसागर है उसको लांग जाएंगे। भागवत में ऐसा भी वर्णन है कि ये जो भवसागर है ऐसे रूप से देखा जाए तो इसको लांगना लगभग नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, परंतु अगर हम भगवान के भक्त बने, भगवान के भक्तों का आश्रय ले, तो ये जो पूरा भवसागर है ये केवल एक जो बछड़ा रहता है उसके हूफ प्रिंट में, उसके पैर का जो निशान आता है उसमें जितना पानी होता है उसके उतने पानी जैसा हो जाता है, और हम इजीली बहुत ही सरलता से सहजता से इसको लांग पाएंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार गरुड़ जी ये स्पैरो को मदद करते हैं, और उसका जो दृढ़ निश्चय था अपने पुत्र वापस, अपने अंडे वापस पाने का, उसको वो मदद करते हैं। और एक हम देखते हैं महाभारत के युद्ध में, महाभारत के युद्ध में नहीं, हर बड़े युद्ध में जो भी राजा या महान व्यक्ति थे उनके जो रथ थे, वो रथ का जो उसके ऊपर झंडा लहराता था, वो झंडे के ऊपर विशेष चिन्ह हुआ करता था। जैसे अर्जुन का रथ था उसके ऊपर हनुमान जी का चिन्ह था, तो कहीं से भी वो रथ का झंडा दिख जाता था और उसके ऊपर हनुमान जी दिख जाते थे तो समझता था कि यहां पर अर्जुन है। तो भगवान श्री कृष्ण का जो रथ है उसके ऊपर हमेशा गरुड़ जी का चिन्ह होता है, तो गरुड़ जी का भी ये भी विशेष स्थान है। फिर हम देखते हैं कि गरुड़ जी के ये सारे पास टाइम्स हमने देखे कि किस प्रकार गरुड़ जी की महानता है। गरुड़ जी अपने भगवान विष्णु के जो भक्त है उनको लेने के लिए भी आते हैं जब भी हमारा शरीर छोड़ने का समय होगा। इवन ध्रुव महाराज की कथा में भी ऐसा आता है कि गरुड़ जी उनको लेने के लिए आते हैं, और ध्रुव महाराज मृत्यु के सर के ऊपर पैर रखकर वैकुंठ विमान में प्रवेश करते हैं। तो आगे कल की डेट में आप सबको पता रहेगा भगवान जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा हुआ, तो ये विशेष है। अभी पिछले हफ्ते माने 13 जून को हमने वाड़ा में जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा किया, तो श्रीमान अभिमन्यु प्राण प्रभु जी ने बहुत ही अच्छी तरह से वहां पे लेक्चर दिया, और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी का भी एक लेक्चर मैंने इसके ऊपर सुना, और उससे ही थोड़ा बहुत जो मैंने रिकलेक्ट किया है वो मैं आपको बताता हूँ। तो प्रभु जी कह रहे थे कि किसी हम अभिषेक, भगवान का अभिषेक कभी करते हैं, उनके जन्मदिन के ऊपर करते हैं। जैसे जन्माष्टमी के दिन हम भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करते हैं, फिर रामनवमी के दिन हम भगवान श्री राम का अभिषेक करते हैं, नरसिंह चतुर्दशी के दिन हम भगवान नरसिंह देव का अभिषेक करते हैं, गौर पूर्णिमा के दिन हम चैतन्य महाप्रभु जी का अभिषेक करते हैं। तो इसी प्रकार स्नान यात्रा है, ये जगन्नाथ जी का अभिषेक है और ये भी उनके जन्म के तिथि के दिन किया जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो ज्येष्ठ पूर्णिमा है, जैसे कल हो चुकी, उसी के दिन भगवान श्री जगन्नाथ जी का आविर्भाव हुआ। तो जगन्नाथ जी के आविर्भाव के अनेकों अनेकों कथाएं हैं, उसमें से एक दो कथा जो मैंने सुने उसका मैं वर्णन करता हूं। एक कथा आती है कि इंद्रद्युम्न महाराज की। तो सत्ययुग में ये राजा हो चुके हैं इंद्रद्युम्न महाराज, और वे जैसे हमने ये भागवत के श्लोकों में देखा कि पहले के जो राजा थे वे राजर्षि हुआ करते थे, राजा भी थे और उनका आचरण ऋषि के जैसा था। तो ये इंद्रद्युम्न महाराज भी थे, वे उनका ज्यादातर समय वे भगवान का भक्ति स्वयं कैसे करें और अपने प्रजाजनों को भगवान का भक्त कैसे बनाए, यही विचार करने में और इसी का नियोजन करने में जाता था। तो वे राजा थे, भौतिक दृष्टि में सभी चीजें या सभी जो व्यवस्थापन है वो अच्छी तरह से कैसे चले ये भी देखते थे, साथ ही साथ खुद के जीवन में और अपने प्रजाजनों के जीवन में भगवान का भक्ति कैसे बना रहे इसका भी विचार करते थे, इसके ऊपर कार्य करते थे। तो एक बार की बात है कि उनकी सभा में सभी वैष्णव साधु ऋषि और कवि जो इंटेलिजेंट लोग थे वे थे। तो उस सभा में वे एक प्रश्न पूछते हैं कि मुझे भगवान का दर्शन पाने की इच्छा है और दुनिया में सबसे अच्छी जगह कहाँ है, ऐसा धाम कहाँ है जहाँ पे मैं भगवान का दर्शन पा सकूँ। तो वो सभा में एक भ्रमण करने वाला साधु, भ्रमण करने वाला सन्यासी भी आया था। तो वो उनको बोलता है कि हे राजन, पुरुषोत्तम क्षेत्र नाम का एक जगह है ईशान्य भारत के ईशान्य तट पर, वहां पे जो समुद्र है वहां पे तट पर, वहां पर एक पर्वत है नीलगिरी नाम का एक पर्वत है और वहां पर भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी जी के साथ वहां पे विराजमान है और उनका नाम है नीलमाधव। नीलमाधव और लक्ष्मी वहां पर विराजमान है। इतना ही नहीं, वहां पे नियमित रूप से हर रोज सभी देवी देवता वहां पर आते हैं, भगवान का पूजा अर्चा करते हैं, भगवान को अनेकों अनेकों व्यंजनों का भोग लगाते हैं, भगवान को विशिष्ट रूप के फूलों के हार चढ़ाते हैं और चले जाते हैं। तो ऐसा स्थान वहां पर है और मैं स्वयं वहां पर जाके आया हूं और भगवान का दर्शन लिया हूं। तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप वहां पर जाइए और वहां पे नील माधव का आप दर्शन कीजिए, निश्चित रूप से आपकी ये जो इच्छा है कि भगवान का दर्शन पाने की वहां पे ही पूर्ण हो जाएगी। तो राजा बहुत प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि मैं मेरी पूरी प्रजा के साथ वहां पर जाऊंगा और भगवान नील माधव का दर्शन पाऊंगा। उसके पूर्व अपने जो महामंत्री थे उनको कहते हैं कि अपने एक व्यक्ति को, ये एक मंत्री को वहां पे भेजो और लोकेशन वगैरह जाने का रास्ता वो सब देख लो, सॉरी। तो ऐसा कहने के बाद उनका एक मंत्री रहता है, उसका नाम है विद्यापति। विद्यापति आगे चला जाता है और उस समय पे चल के गया होगा या घोड़े पे गया होगा। वहां पे जाने के पश्चात बहुत अंतर था क्योंकि ऐसा नहीं कि वो पास पास में थे। हालांकि इंद्रद्युम्न महाराज पूरे विश्व के चक्रवर्ती सम्राट थे, परंतु उन्होंने फिर विद्यापति को वहां पे भेजा और जाने के पश्चात वहां पे उन्होंने देखा कि एक विशिष्ट आदिवासी जमात थी, वहां पे जंगल में रहने वाले लोग थे, उनका नाम था शबराज और शबरा का एक राजा था, उनका नाम था विश्ववसु। तो इनसे जाके वे मिलते हैं और फिर उनकी पुत्री थी ललिता वो विश्ववसु की, तो उनसे वे विवाह भी कर लेते हैं। और फिर कुछ समय के बाद वो ललिता और देखते हैं कि ये जो विश्ववसु है रोज शाम को रात के टाइम अर्ली मॉर्निंग कहीं पे जाते हैं और वहां से वापस आने के पश्चात उनके शरीर से एक विशिष्ट सुगंध आता है जो कि इस दुनिया में कहीं भी पाया नहीं जाता। तो ये सुनने के बाद बार बार वो ललिता को, अपने पत्नी को पूछते हैं कि तुम्हारे पिता कहाँ जाते हैं और इनके शरीर से इतना अच्छा सुगंध कैसे आता है। तो पहले तो उनकी पत्नी कुछ बताती नहीं है, क्योंकि उनके पिता ने उनको कहा रहता है कि ये बारे में जो मैं जो करता हूँ या जो मैं जहाँ जाता हूँ उसके बारे में किसी को मत बताओ। परंतु क्योंकि वो पत्नी है और पति पत्नी में ज़्यादा चीज़ें छुपी नहीं रह सकती है, तो वो एक बार बता देती है कि मेरे पिता नील माधव जो भगवान है उनके पूजा करने के लिए जाते हैं, और वहाँ से वहाँ पे क्योंकि देवी देवता भी आते हैं, तो वहाँ पे जाके आने के पश्चात इनके शरीर से भी ऐसी ये जो डिवाइन या आध्यात्मिक खुशबू आती है। तो वो जो विद्यापति है वो उनसे विनती करते हैं, पत्नी को और अपने ससुर को भी, कि मुझे भी आप भगवान के दर्शन के लिए लेके जाओ। तो फिर वो एक आइडिया करते हैं, वो जो उनके ससुर थे, क्या नाम था उनका, विश्ववसु, तो वे क्या करते हैं, इनके आंखों के ऊपर पट्टी बांधते हैं और इनको लेके जाते हैं। चलो मैं आपको लेके जाता हूँ, केवल आप आंखें खोल के मत देखो, क्योंकि हमारी इच्छा है कि आप केवल दर्शन लो और वापस आओ, इतना ही इच्छा है। तो ठीक है, तो ये आंखों के ऊपर पट्टी बांधते हैं और इनको लेके जाते हैं, और भगवान के पास लेके जाने के बाद नील माधव का बहुत ही सुंदर विग्रह रहते हैं, उनका वे दर्शन लेते हैं। और परंतु क्योंकि ये एक उद्देश्य यहाँ पे आए थे, राजा का उनको निर्देश था कि नील माधव की खोज करनी है और वहां पे सबको विशेष रूप से राजा को लेके आना है, तो और मंत्री होने के कारण वो बहुत ही इंटेलिजेंट भी थे, बहुत होशियार थे, तो वे अपने हाथ में एक तिल या बीज लेके जाते हैं। तो जैसे ही ये आग के पट्टी बांध के भी उनके ससुर लेके जाते हैं, तो भी ये जाते में रास्ते में थोड़े थोड़े एक एक बीज डालते हुए जाते हैं। तो आने के पश्चात कुछ दिनों के बाद उन बीजों में से छोटे छोटे रोप या पौधे उगते हैं, तो उनको वो रास्ता समझ में आ जाता है। तो फिर वहां से भी वापस इंद्रदुम्न महाराज के पास जाते हैं और उनको न्यूज ये खबर देते हैं कि इस प्रकार मैं गया था, ये पुरुषोत्तम क्षेत्र नाम का जगह है और वहां पे नील माधव उपस्थित है, हम जा सकते हैं। तो फिर इंद्रदुम्न महाराज अपनी सारी प्रजा को लेते हुए वहां के लिए चलते हैं, और फिर रस्ते में जैसे जाते हैं तो आधे रस्ते में उधर से उल्टी दिशा में एक व्यक्ति आके इनको एक बैड न्यूज, गलत मतलब खराब बातमी देता है, न्यूज खबर देता है कि जैसे ये विद्यापति वापस आए और आपको लेके आ रहे, तभी वहां पे एक बड़ा एक बवंडर आ गया और नील माधव नील पर्वत के साथ वो रेत के नीचे दब गए और अभी वहां पे वे उपस्थित नहीं है। तो ये न्यूज, ये खबर सुनने के बाद इंद्रदुम्न महाराज को बहुत दुख हुआ, हाँ बहुत दुख हुआ। परंतु उसी समय वहां पे नारद मुनि आए और उन्होंने उनको सांत्वना दी कि हे इंद्रदुम्न महाराज, आप चिंता ना करें, आपके मार्ग में रुकिए मत, आप पुरुषोत्तम क्षेत्र की तरफ प्रस्थान चालू रखिए, निश्चित रूप से भगवान नील माधव आपको दर्शन देंगे। तो ये सांत्वना सुनने के बाद, हाँ क्योंकि नारद मुनि भगवान के पार्षद है, वो कभी भी असत्य नहीं कहेंगे, तो ये विश्वास होने के पश्चात इंद्रदुम्न महाराज उस दिशा में आगे चलते हैं। और वहां पे पहुंचने के बाद उनको समुद्र तट पर, समुद्र में लकड़े, बड़े बड़े लकड़े के वुड लॉक्स, लकड़े के बड़े बड़े तीन लॉक्स वहां पे मिले समुद्र में, और परंतु वो समुद्र से निकाला उन्होंने, परंतु उसको उससे मूर्तियां बनाने के लिए या उसका कुछ उपयोग करने के लिए उनको शिफ्ट कर नहीं पा रहे थे, और ना ही कोई कारपेंटर जो है उसके ऊपर अपना छन्नी या कुछ इंस्ट्रूमेंट है वो चला नहीं पा रहा था। तो उस समय एक बूढ़ा व्यक्ति वहां पर आया और वो साक्षात विश्वकर्मा थे, जो कि देवी देवताओं के आर्किटेक्ट है, जो कि उनके घर या महल बनाते हैं। तो विश्वकर्मा वहां पर आए और उन्होंने कहा कि ये भगवान के विग्रह बनाने के लिए ये वुड लॉक्स आए हैं, इनको आप, उन्होंने हाथ लगाया तो वो शिफ्ट होने लगे, तो इनको आप अच्छी जगह पे रखो और मैं स्वयं इनमें से भगवान के विग्रह बनाऊंगा, परंतु मुझे ये कार्य करने के लिए कुछ दिन लगेंगे, इस बीच मुझे किसी ने डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, मैं एक बंद घर में या खोली में या हॉल में इनसे विग्रहों का निर्माण करूंगा और उसके बीच मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो ऐसा बोलने के बाद वो अंदर चले जाते हैं और अपना कार्य चालू करते हैं। परंतु कुछ दिन तक वहां से अंदर से आवाज आता है कि हाँ कारपेंटर कुछ कार्य कर रहा है। जैसे अभी इधर देखो कार्य चल रहा है तो हमको आवाज आ रहा है ना, मतलब इधर कार्य चल रहा है, मानो ये कुछ एकदम शांति है तो हमको क्या लगेगा, एक तो काम पूरा हो गया या काम बंद हो गया। तो महाराज की पत्नी थी, इंद्रद्युम्न महाराज की पत्नी थी गुंडीचा महारानी, तो वे बहुत साशंक हो गई, चिंता हो उनको होने लगी कि अरे ये कारपेंटर ने बोला था कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, परंतु अंदर से कुछ आवाज ही नहीं आ रहा है। एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, पांच छह सात दिन हो गए, ऐसा तो नहीं ये बूढ़ा व्यक्ति था अंदर ही मर गया तो समझेगा भी नहीं। तो इसलिए एक दिन वो दरवाजा खोलते हैं, खोलते हैं तो देखते हैं भगवान के जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह है, परंतु ये विग्रह अधूरे, उनको लगता है कि ये अधूरे हैं, इनको पैर नहीं है, हाथ में पंजे नहीं है, कान नहीं है, कुछ ऐसा अधूरे विग्रह लगते हैं। और फिर वापस से इंद्रद्युम्न महाराज को और उनकी पत्नी जो गुंडीचा महारानी है उनको बहुत दुख होता है, अरे हमने समय से पहले ये दरवाजा खोला इसलिए वो जो बूढ़े बाबा थे वो भी गायब हो गए और हमारे विग्रह आधे रह गए। वापस वहां पे नारद मुनि आते हैं और महाराज जी को बोलते हैं कि आप चिंता ना करें, ये जो विग्रह है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के ये पूर्ण है और भगवान का ये विशेष दर्शन है और मैंने ये दर्शन पहले पाया है, दर्शन लिया हुआ है। तो इसलिए फिर नारद मुनि जो इंद्रद्युम्न महाराज है उनको वो कथा बताते हैं कि जिस समय रोहिणी माता भगवान श्री कृष्ण की 16108 पत्नियों को कृष्ण कथा कहती है और उस समय कृष्णा बलराम और उनकी बहन सुभद्रा उस सुनने की वजह से भगवान, ऐसा कहा जाता है जहां कहां पे भगवान की कथा होती है यत्र गायंती मद भक्ता, तो जहां जहां पे भगवान श्री कृष्ण का भगवान का नाम संकीर्तन होता है या कथा होती है वहां पे भगवान पहुंच जाते हैं। तो वो कथा सुनने के लिए वहां पे कृष्ण बलराम और उनकी बहन सुभद्रा खड़ी रहती है और वो कथा सुनते सुनते, क्योंकि वो वृंदावन की कथा चल रही थी तो वो कथा सुनते सुनते वे भाव विभोर हो जाते हैं और भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का जो रूप आज हम देखते हैं, कल हमने स्नान यात्रा में देखा, 7 तारीख को रथ यात्रा है उसमें हम जो देखेंगे वह जो रूप वहां पे वो प्रकट करते हैं और नारद मुनि को पहली बार दर्शन हुआ था वो भी कथा विस्तार से है, परंतु समय का अभाव है तो हम यहीं पे कथा को विराम देते हैं। भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, गरुड़ जी महाराज की, श्रीमद् भागवतम की, भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, ताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। किसी को कुछ टिप्पणी या प्रश्न है तो
हरे कृष्ण प्रभु जी थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, वंडरफुल क्लास। आपने जो स्टार्टिंग में बताया था कि जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे, उसके बाद आपने पूरी कथा बताई, उसमें आपने गरुड़ जी का जन्म बताया, फिर गरुड़ जी की महानता वगैरह बताई मुझे। तो गरुड़ जी से रिलेटेड मुझे एक क्वेश्चन है मेरे को। गरुड़ जी बहुत महान भक्त है एक्चुअली, मतलब भक्त या कह सकते हैं भगवान के पार्षद ही थे, तो गरुड़ जी जो भी एक्टिविटी करते थे वो महान मानी जाती थी। तो कभी कभी क्या होता है मुझे, कुछ बड़े डिवोटीज होते हैं उनकी एक्टिविटीज हमको लगती है कि मतलब उनकी जो भी एक्टिविटीज़ होती है ऑटोमेटिकली हमको लगता है कि बहुत महान एक्टिविटीज़ है, बट कभी कभी हम उनकी एक्टिविटीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि किस तरीके से महान है या सही है या गलत है। गलत तो नहीं होती है बट कुछ तरीके से वो करते हैं ताकि चीज़ें हमको नहीं लगती वो समय, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो बहुत महान एक्टिविटी है। तो ऐसे सिचुएशन में कैसे समझा जाए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर गरुड़ जी जब यमुना पे थे तब शौबरी मुनि जो अंदर तपस्या कर रहे थे, तो गरुड़ जी वहाँ पे आते थे, स्नेक वगैरह खा जाते थे या फिश को खा जाते थे, तो वो एक्टिविटी जो थी वो शौबरी मुनि को जमी नहीं और उसके वजह से फिर उन्होंने श्राप दे दिया और बहुत सारी एक्टिविटी। तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है जो महान लोग अलग तरीके से करते हैं लेकिन नॉर्मल व्यक्ति समझ नहीं पाता है और उसके चक्कर में वो गलत परसेप्शन बना लेता है उससे, तो उसको कैसे समझा जाए।
वही है जैसे आपने आपके प्रश्न का उत्तर दिया है कि जो महान व्यक्ति है उनके कार्यों को हमने जज नहीं करना चाहिए। जैसे आपने बताया शबरी मुनि ने उनको जज किया, उनका ही पतन हो गया। फिर और भी ऐसे बहुत से उदाहरण है शास्त्रों में कि जब हम दूसरे विशेष रूप से बड़े व्यक्ति को जज करते हैं तो उससे हमारा ही नुकसान होता है। और ये जो भक्त है, जैसे जय विजय के बारे में, अभी चतुष्कुमारों ने उनको शाप दे दिया, उन्होंने गलती की इनको रोकने की और उन्होंने उनको शाप दे दिया, परंतु उसके आगे चल के क्या हुआ कि उनकी भगवान की लीला में उनका सहयोग हुआ। 3 बार वो आए राम, मतलब अलग अलग भगवान के अवतार हुए, कितने सारे कथाएं और पास टाइम्स भगवान के हमको सुनने को मिले। तो विशेष रूप से बाहर के लोगों के बारे में हम नहीं बोलते हैं कि जो भगवान के भक्त नहीं, विशेष रूप से भगवान के भक्त है उनके जो कार्यकलाप है उनको हमको जज नहीं करना है। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेन भुजाए, ऐसा एक श्लोक है। इसका मतलब है ये जो महान वैष्णव है इनकी क्रिया मुद्रा हमको नहीं समझते हैं। जैसे कि शब्द ये जो आपने पास टाइम बताया उसके भी वही तालाब में यमुना में, फिर बाद में कालिया आता है, फिर कालिया मर्दन लीला होती है, तो आज तक हम उसका वर्णन कर रहे हैं। भगवान का कितना अच्छा कि जो कोई नॉर्मल व्यक्ति प्लेन सरफेस पर डांस नहीं कर सकता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण के कालिया के हुड्स के ऊपर नृत्य किया, तो कितना हर मंदिर में कहाँ कहाँ पे हम देखते हैं कि सांप कालिया के ऊपर भगवान का विग्रह। तो ये जो पास टाइम्स होता ही नहीं था, अगर पहले अगर गरुड़ जी उनको रोकते नहीं थे, ऐसा मतलब जो आपने पास टाइम बोला अगर वो नहीं होता तो आगे ये नहीं हो पाता था। तो भगवान के जो भक्त कार्य करते हैं वो भगवान की इच्छा से बहुत बार होता है और भगवान की जो लीला है उसमें सहयोग करने के लिए होता है। कई बार तो उसमें वो भक्त को नुकसान सहना पड़ता है, जैसे कि कुंती महारानी है, पांडव है, इनके जीवन में कितने कष्ट आए। हम बोलेंगे अरे यार इससे अच्छा तो भगवान का भक्ति ना बनूं, इतने कष्ट है, परंतु क्योंकि उनके जीवन में उतने कष्ट आए, उतने कष्टों में भी उन्होंने भगवान का साथ, मतलब भगवान का भक्ति नहीं छोड़ा, तो इसलिए उनका भी महानता सिद्ध हुआ और भगवान के भी इतने पास टाइम्स हमको देखने को सुनने को मिले। तो इस प्रकार हमको जानना चाहिए कि भगवान की इच्छा से वो होता है, हमको उसको जज नहीं करना चाहिए। यदि हमको कुछ डाउट है तो अपने जो सीनियर वैष्णव है उनसे पूछ के उसका क्लैरिफिकेशन कर लेना चाहिए, क्योंकि आज के दुनिया में भी ऐसे महान वैष्णव है कि उनका कुछ कार्य बाहरी रूप से हमको गलत दिख सकता है कि कोई ब्रह्मचारी है, कोई स्वामी जी है, कोई कुछ कभी कभी अफवाहें निकलती है कि ये प्रभु जी ऐसा कर रहे हैं या ये स्वामी जी ऐसा चल रहा है, ऐसा कुछ निकल सकता है। तो उस समय भी हमको उसको डायरेक्टली जज नहीं करना चाहिए या खुद उसके बारे में गूगल सर्च नहीं करना चाहिए, कोई वरिष्ठ वैष्णव से पूछना चाहिए, क्योंकि उनको पूरा स्थिति पता रहता है कि ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है और इसका परिणाम क्या होगा। तो हमको चाहिए कि महाजनों ये न गतस्तपनता, महाजन को पूछ लेना चाहिए। 12 महाजन तो है पर अभी भी अपने जो काउंसिलर्स है ये भी हमारे लिए महाजन की जैसे है, वो भी हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद।